पिछले अध्याय में आपने देखा कि देवांश को इस चोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे अपने आंखों में गुस्से की आग लिए खुद से ही बोला, गुड गर्ल, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। इसकी सजा तुम्हारे साथ साथ उस लड़के को भी जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर तुम उसके साथ गई तो उसने भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश की है। इसलिए अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। इतना बोल वे भी अपनी कार निकालता है और उसमें बैठ तेज स्पीड के साथ कार चलाते हुए दिशा के पीछे चला जाता है। चैप्टर 38, अब आगे। वहीं दूसरी तरफ अनाथाश्रम में, रोही जो पहले ही अनाथाश्रम आ गई थी और कब से दिशा का इंतजार कर रही थी, पर इतनी रात हो जाने के बाद भी जब दिशा नहीं आती तो रोही दिशा की चिंता करते हुए खुद से कहती है, ये दी अभी तक आई क्यों नहीं? इतना ज्यादा टाइम हो गया, कहीं दी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? मैं एक काम करती हूँ, फिर से फ़ोन ट्राई करती हूँ, क्या पता दी इस बार उठा ले। इतना बोल वे जैसे ही दिशा को फ़ोन लगाने वाली होती है, वैसे ही उसे गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है, जिसे सुन रूही कॉल ना लगाकर बाहर की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिशा अनाथाश्रम को देख पवन की बाइट से उतर जाती है और पवन को देख बोली, थैंक यू पवन मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। दिशा की बात सुनकर पवन मजाकिया स्टाइल में बोलता है, वेलकम दिशा, क्या मुझे ये मौका दोबारा मिलेगा? क्योंकि मुझे आपको यहाँ छोड़कर काफ़ी खुशी हुई। पवन जिस अंदाज में ये सब बोलता है उसे सुन दिशा को भी हल्की हंसी आ जाती है, जिसे देख पवन भी मुस्कुरा देता है। वहीं दिशा मुस्कुराते हुए पवन से बोली, अब तुम्हें मुझे दोबारा घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं इतनी रात तक ऑफिस में रुकूंगी ही नहीं। दिशा ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ रूही आ जाती है और दिशा को देख बोली, दी थैंक्स गॉड आप आ गई, मैं काफ़ी परेशान हो गई थी और आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। आप इतनी देर से कहाँ गई दी? आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? रूही की इतनी सारी बातों को सुन दिशा उसे शांत कराते हुए कहती हैं, मैं सब कुछ बताऊंगी, पहले अंदर तो चल। फिर पवन की तरफ देखते हुए, अब तुम भी जाओ, काफ़ी लेट हो गई है। दिशा की बात सुनकर पवन अपना सर हाँ में हिला देता है और बाइक स्टार्ट कर रूही और दिशा को बाय बोल वहाँ से चला जाता है। वहीं पवन के जाते ही दिशा भी रूही को लेकर अंदर चली जाती है। सभी के जाने के बाद अनाथाश्रम के कुछ दूरी पर खड़ी देवांश की कार में बैठा देवांश जाती हुई दिशा को गुस्से में देखता है और कार स्टार्ट कर वे भी विला के लिए निकल जाता है। वहीं अंदर कमरे में पहुंच दिशा रूही को सारी बात बता देती है, जिसे देख रूही कहती है, ठीक है दी, पर आगे से आप इतनी देर ऑफिस में मत रुकना। रुकिए मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, फिर आप खाकर आराम कर लीजिएगा। रूही की बात सुनकर दिशा कुछ नहीं कहती और जाकर फ्रेश हो जाती है। तभी रूही खाना लेकर आ जाती है और अपने हाथों से दिशा को खिलाती है और खुद भी खाती है। उसके बाद दोनों काफी ज्यादा थकी होने की वजह से बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। अगली सुबह दिशा और रूही उठ तैयार हो कॉलेज और ऑफिस के लिए निकल जाती है। दिशा आज लेट नहीं होना चाहती थी, ना ही कोई पनिशमेंट पाना चाहती थी, इसलिए वे जल्दी ही खुद उठने के बाद रूही को भी उठाकर जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला, आज सिंघानिया विला काफी खूबसूरती से सजाया जा रहा था। हो भी क्यों, आज घर के बड़े बेटे और मोस्ट हैंडसम बैचलर मिस्टर रुद्र सिंघानिया की जो एंगेजमेंट थी। वहीं सुमन इधर उधर दौड़ते हुए सारे काम करवा रही थी, जिसे देखती रज्जी वहां आ सुमन को सोफे पर बैठा एक सर्वेंट से जूस का ग्लास मंगवा सुमन को जूस पिलाते हुए कहते हैं, सुमन जी आप सारी चिंता को छोड़ पहले जूस पीजिए, आपके यूं परेशान होने से सारे काम हो नहीं जाएंगे, घर में इतने सर्वेंट हैं वे मिलकर सारे काम करवा लेंगे। धीरज जी की बात सुनकर सुमन थोड़ा सा जूस पीती है, फिर जूस को अपने मुंह से हटाते हुए बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे बेटे की शादी है और मैं सब कुछ यूं नौकरों पर नहीं छोड़ सकती, आप जाइए बाकी के काम कीजिए, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। इतना बोल वे बिना धीरज की आगे की बात सुने बाकी सारे कामों को देखने लगती है। वहीं धीरज अपना सर ना में हिला बाकी के इंतजाम देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ परी के रूम में, परी दो तीन लहंगे को निकाले कन्फ्यूजन में कहती हैं, अरे यार मैं आज कौन सा लहंगा पहनूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये रूही होती तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन ये महारानी पता नहीं कहाँ रह गई, सुबह से मेरा फोन ही नहीं उठा रही, मैं एक काम करती हूँ फिर से ट्राई करती हूँ, अब शायद लग जाए। इतना बोल वे अपना फोन ले रूही को कॉल लगा देती है। वहीं रूही जो कॉलेज के गार्डन में बैठी एक बुक पढ़ रही थी, जब वे देखती है कि फोन बज रहा तो वे अपना फोन निकाल उसमें परी का कॉल देख कॉल रिसीव कर लेती है। वहीं परी जैसे ही देखती है कि कॉल रिसीव हो गया है, वैसे ही वे रूही से शिकायत करते हुए बोली, थैंक्स गॉड रूही कि तूने कम से कम कॉल को उठाया, मैं सुबह से तुझे कॉल कर रही थी, तू ऐसा भी कहाँ बिजी थी जो तुझे मेरा फोन उठाने का भी टाइम नहीं मिला। परी की बात सुनकर रूही बोली, कुछ नहीं, बस मेरा फोन पता नहीं कैसे साइलेंट पर चला गया था, अभी कुछ देर पहले ही सही किया है, तू बता क्या हुआ। रूही की बात सुनकर परी परेशान होते हुए बोली, रूही तुझे तो मालूम है ना आज भाई की एंगेजमेंट है और तू भी तो आएगी ही ना, तो तू एक काम कर, तू पहले ही आ जा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं, मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ, तू आकर मेरी हेल्प कर देना, रूही की बात सुनकर परी बोली। सॉरी यार परी, पर तू आज खुद से ही मैनेज कर ले। वैसे भी आज मैं एंगेजमेंट में नहीं आने वाली, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और वहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ भी रहेगा, इसलिए मैं अब कॉलेज से सीधा अनाथ आश्रम जाकर आराम करूंगी। तू आंटी से भी मेरी तरफ से सॉरी कह देना, रूही की बात सुनकर परी गुस्सा होते हुए बोली। रूही मैं तेरी आज एक भी नहीं सुनने वाली, तू आज भाई की एंगेजमेंट में आ रही है तो आ रही है, अगर तुझे तेरी तबीयत खराब लगे तो तू मेरे कमरे में जाकर आराम कर लेना, लेकिन तुझे आज आना तो पड़ेगा ही। तो एक काम कर, कॉलेज में रुकी रहना, मैं अपनी और तेरी दोनों की ड्रेस ले कॉलेज ही पहुंचती हूँ, फिर हम वहाँ से पार्लर में तैयार होकर सीधा एंगेजमेंट पार्टी में चलेंगे।
इतना बोल बिना रूही की कोई बात सुने परी कॉल कट कर देती है। वहीं रूही परी की बात सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वे अब रुद्र के घर क्या उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि रुद्र ने जिस तरह का बिहेव उसके साथ किया था उसकी वजह से वे उसके दूर ही रहना चाहती थी।